इन पिछले अध्याय में आपने देखा कि ज़ोया और अयान शादी करने पर सहमत हुए। इस अध्याय में मानवी को साड़ी और मेकअप के लिए तैयार किया जाता है और वेद मानवी की मांग में सिंदूर भरता है। बलवंत मेहरा शेयर्स और गिफ्ट्स देते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद शॉपिंग शुरू होती है, जिसमें अवनी के लिए खरीदारी होती है। मानवी के लिए भी शॉपिंग होती है, लेकिन वो थोड़ा असहज महसूस करती है। बाद में वेद को अयान का कॉल आता है और वे अयान की मदद करने के लिए जाते हैं। सुधीर और रुचिका उनसे मिलने आते हैं। नाउ नेक्स्ट, रुचिका कितनी देर बैठी मानवी से बातें करती है। मानवी का मूड भी थोड़ा अच्छा हो गया था। उसे रुचिका काफी अच्छी लड़की लगी। वो इतने बड़े खानदान से थी, मगर सिंपल और प्यारी। उसकी बातों में कहीं भी मानवी को नहीं लगा कि वो पहली बार उससे मिल रही है। मानवी इतना समझ गई थी कि रुचिका को अपनी जिंदगी में थोड़ा ड्रामा चाहिए था। उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ पसंद नहीं थी, जैसे अचानक उसकी फैमिली ने सुधीर के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी थी और अब वो शादी करने जा रही थी, जबकि वो चाहती थी कि उसे कोई जिंदगी में कोई ऐसा लड़का मिलने जो जिसे उसे प्यार हो जाता। मानवी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती रही। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ रुचिका को मिल रही थी, वही लाइफ के लिए मानवी तरस गई थी। उसकी तो पूरी जिंदगी ही एक ड्रामा थी, जिस पर अच्छी खासी फिल्म बन सकती थी। वो दोनों बैठी बातें ही कर रही थी कि वेदिका अवनी को लेकर उनके पास आ गई थी। मॉम, मानवी को अवनी ने देखते ही कहा। बेटा, तुमने खाना खा लिया? मानवी ने उससे पूछा। मुझे दादी माँ ने अभी खिलाया है, वो कहने लगी। तुम तो खा लिया, मगर मुझे बहुत भूख लग रही है, रुचिका ने अवनी से कहा। हम लोग यहीं पर खाना मंगवा लेते हैं। रुचिका ने वहीं पर खाना ऑर्डर किया। वहीं पर खाना आ गया था। अच्छा है तुम दोनों देवरानी जेठानी खाना खाओ। मैं तो बस एक बार अवनी को तुमसे मिलवाने के लिए लाई थी। मुझे लाई तुम ऐसे याद कर रही होगी। अब इसके दादू से बुला रहे हैं, हम वहीं चलते हैं, वेदिका ने मानवी से कहा। ठीक है मामा, आप मेरा फिक्र मत करना, मैं दादी माँ और दादा डैडी के पास हूँ, अवनी ने मानवी को किस किया और वो वापस वेदिका के साथ बाहर जाने लगी। मानवी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अवनी बहुत खुश थी और उसे अपनी बेटी की खुशी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। वो सबसे ज्यादा हैरान थी बलवंत मेहरा पर थी, जो पूरी कंपनी में सबसे स्ट्रिक्ट एस जाने जाते थे। वो एक छोटी सी बच्ची के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे थे जैसे वही उसकी जिंदगी थी, और मानवी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर उसकी बेटी खुश थी। कॉन्ट्रैक्ट वाली क्या बात थी, मानवी ने खाना खाते हुए रुचिका से पूछा। अब भाभी आपसे क्या छुपाना, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आपको बड़े भाई बता देंगे, रुचिका ने कहा। मैं और सुधीर कैसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, वेद भाई की हेल्प से हमने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया है। उसकी बात से मानवी सचमुच हैरान होती है कि आजकल के बच्चे कितने अजीब हो चले हैं। वो दोनों थाना ही कर रही थी कि उनके कमरे में किसी ने नॉक किया। मानवी भी उठकर खोलती है तो सामने रीना खड़ी हुई थी। मैं भी आ जाऊं, उसने मुस्कुराकर कहा। मुझे वेदिका ताई जी ने भेजा है, उन्होंने कहा कि मेरी दो देवरानी और जेठानी इस कमरे में हैं, मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करूं। आइए ना, इसमें पूछने की क्या बात है, मानवी ने कहा। वो भी उन लोगों के पास आकर बैठ गई। उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया था, वो भी उन लोगों के साथ खाना खाने लगी। तीनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ बातें करती रही थी। तीनों को ही एक दूसरे की कंपनी पसंद आई थी। रीना जो बेहद परेशान थी वेदांत की हरकतों की वजह से, अब इन लोगों के पास आकर उसे थोड़ा उसका मन अच्छा हो गया था। वो तो अपनी मॉम और बहन के पास भी नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि वो उसका स्ट्रेस और बढ़ा देती, मगर जहाँ कर वो काफी हल्का फुल्का कर रही थी। अयान के कमरे में गौतम पहले से ही बैठा हुआ था, तभी वेद और सुधीर भी वहां पहुंच गए। अयान की शर्तें मानने के बाद तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। दरअसल जो बातें ज़ोया ने अयान से कही थी, वही अब मजाक का कारण बनी हुई थी। हाँ हंस लो, तुम तीनों को मुझ पर थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या, अयान ने बनावटी गुस्से में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हंसी थी। वकील थोड़ी ही देर में आ जाएगा सर, गौतम हंसते हुए बोला। फिर अचानक गंभीर होकर उसने कहा, वैसे मैं तो सीरियस रहना चाहता हूँ, मुझे हंसना नहीं चाहिए, आप सब मेरे बॉस हैं, मगर सच बताइए, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों कर रहे हैं, असली शादी क्यों नहीं करते, वेद ने हंसते हुए पूछा। और तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुई, गौतम झेपते हुए बोला। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, तब हम सब पूछेंगे तुमसे, सुधीर ने छेड़ा। लेकिन सर, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बद्दुआ मत दीजिए, गौतम सीधा सा चेहरा बनाकर बोला। मुझे तो सिंपल सी घरेलू लड़की चाहिए, मैं अपनी माँ की मर्जी से ही शादी करूंगा, वे ही मेरे लिए सही लड़की चुनेंगी, अयान ने हंसते हुए कहा। तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें दुआ है कि तुम्हें जल्दी ही प्यार हो जाए। जब इंसान को प्यार होता है ना, तब उसकी हालत देखने लायक हो जाती है। वो कुछ पल के लिए रुका और गहरी सांस लेकर बोला, मुझसे पूछो किस हाल में हूं मैं। तीनों भाई उसे ध्यान से देखने लगे। अब देखो, पहले मैं छोटी सी बात पर भड़क उठता था, हर वक्त गुस्से में रहता था, लेकिन अब मुझसे किसी पर गुस्सा ही नहीं आता। मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये क्या हो गया है मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जोया से प्यार कैसे हुआ। शायद एक्सीडेंट की वजह से मुझ में चेंज आए हैं। अयान की आवाज में पहली बार सुकून और हल्की सी मासूमियत थी। सचमुच वो कोई और अयान था। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वेद ने सिर हिलाते हुए कहा। अयान को इतना गुस्सा आता था कि पूछो मत। हॉस्टल के मुलाजिम को पीट देना, लड़कों से छोटी सी बात पर लड़ाई कर लेना, और सबसे बड़ी बात, जो भी लड़की उसकी नजर में आ गई उसे छोड़ना तो जैसे इसके खून में ही नहीं था। पैसों से लेकर तक सब लूटता था ये। अयान ने हंसते हुए पलटवार किया, अपना भूल गया क्या? हाँ, तुम्हारा गुस्सा मेरे जितना नहीं था, तुम कंट्रोल कर लेते थे, मगर छोड़ा तो तुमने भी किसी लड़की को नहीं, सबको पटाने में पीछे नहीं था तुम भी। दोनों एक दूसरे के राज खोल रहे थे। कमरे का माहौल मजाक और हंसी से भर गया। गौतम, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, हैरान होकर बोला, लेकिन आप लोग अपने छोटे भाई को क्यों भड़का रहे हैं? उसका इशारा सुधीर की तरफ था। अयान ठहाका लगाकर बोला, अरे ये बिगड़ेगा नहीं, इसकी शादी हो रही है अब, और वैसे भी हम सब भी तो सुधर चुके हैं। वेद, जो उस वक्त गौतम के लाए हुए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा था, अचानक गंभीर हो गया। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, वही जोया है ना? कितने साल पहले तुम्हारा उससे निकाह हुआ था और तुम उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे। आज वही तुम्हें अपने पास भी नहीं आने देती और फिर भी तुम उसी के पीछे पागल हो। सचमुच तुम मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो। लगता ही नहीं तुम वही हो जिसे मैं इतने सालों से जानता हूँ। लगता है मेरे बाहर जाने के बाद दुनिया ही बदल गई है। 5 साल के बाद लौटा हूँ मैं। अयान की आंखों में जैसे नशा उतर आया। पता नहीं, मुझे सच में नहीं पता क्या हो गया है, बस इतना लगता है उसे देखता रहूं, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसके बाल, सब मेरी आंखों के सामने रहे, बस वही मेरे पास हो। वो मुझ पर कितना भी गुस्सा हो जाए मगर मुझे गुस्सा नहीं आता। ये कहते कहते अयान जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया। वेद ने उसे झकझोरते हुए कहा, वापस आ जा यार होश में, तुम्हारे पास जोया नहीं, हम लोग हैं। क्या अयान और जोया दोनों एक साथ हो सकेंगे? क्या इतना आसान होगा जोया को पाना?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें।